ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कौन हो? आज बाबा ने कहा है तुम बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय हो। अब ईश्वरीय संप्रदाय के क्या कर्तव्य होते हैं वो बाबा ने बताए। ईश्वरीय संप्रदाय किसकी मत पर चलते हैं वो बताया है। तो कहेंगे श्री मत पर चलते हैं ईश्वरीय संप्रदाय। दुनिया में है आसुरी संप्रदाय, वो मन मत पर चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तो मनुष्य मत और ईश्वर की मत में कितना अंतर है। ईश्वरीय मत हमें कहाँ ले जाती है और मानव मत आसुरी मत हमें कहाँ ले जाती है, ये कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बताया है। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है? ईश्वरीय मत पर चलना। जो भगवान हमें कह रहे हैं वही हमें सुनना है, उसी पर चलना है। तो ईश्वरीय मत कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है ईश्वरीय मत? भगवान की मुरली से। वैसे गायन है श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन बाबा कहते हैं रियल अगर कहीं श्रीमद् तो वो भगवान की मुरली से मिलती है, और यही सच्ची गीता भी है। तो बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय मत पर चलने से तुम कितने ऊंच बनते हो, संगम पर भी कितने ऊंच बनते हो, तुम्हारा कितना गायन है भक्ति मार्ग में, कितना गायन है किनका? देवियों का। क्यों इतना गायन है? क्योंकि वो ईश्वरीय मत पर चली है। इसीलिए कहते हैं शिव शक्ति, शिव की मत पर चली तो इसलिए शिव शक्ति कहलाई, और उनका कितना पूजन है। तो आज बाबा ने सारी मुरली में कितनी बार ईश्वरीय संप्रदाय का, तो हमें क्या करना है वो भी बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है। आज 10/6/2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्री मत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। क्यों मिलती है श्रेष्ठ मत? श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। इसलिए श्री मत पर सबको सुख देना है। प्रश्न है, रहम दिल बच्चों के दिल में। अब जो श्री मत पर चलेंगे तो वो रहम दिल भी होंगे, तो रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या कहती है श्री मत? तो बाबा कहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, वो लहर जब आती अंदर में समझते हैं हाँ ये भगवान की मत है, इस पर हमें चलना है, हमको चलना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर है, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है, क्या दिल होती है, कि हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। ना उस समय तो गांव में कोई खास सर्विस नहीं थी, अभी तो बहुत गांव गांव में सेवा खूब हो रही है, खूब प्रदर्शनियां लगाते हैं, खूब गीता पाठशालाएं खुल गई है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये तुम रहम दिल बच्चों को करना चाहिए। हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें, आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं। दुखियों को क्या करना है? खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ब्रह्मोस ब्रह्मोस आके कितनी कितना वर्णन आता है, तो ये महाभारत का ब्रह्मास्त्र से ही तो वर्णन है ना, ब्रह्मास्त्र से ये ब्रह्मोस लिया होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो जरूर ये समझते होंगे, क्या समझते हैं सभी, कि हम हैं ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय संप्रदाय। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे, ईश्वरीय संतान है तो ईश्वर के बच्चे हैं तो आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम है ईश्वरीय संतान वा संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया क्या बन गई, और उसमें भी भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख देते रहते हैं। सारी दुनिया केवल एक परिवार की बात नहीं है, एक देश की बात नहीं है, सारी दुनिया में मनुष्य, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उनों को ये भी पता नहीं है इतना दुख देते हैं, उस दुख में ऐसे फंसे हुए हैं, जो उनको ये भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। उस समय से ऐसे ही दुनिया है, यही दुनिया है, तो सुख धाम भी होता है ये इसको पता ही नहीं है। परम पिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं, सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ, फिर कब पूरा होता है ये दुख, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। क्यों नहीं चिंतन होगा ये कब शुरू हुआ दुख और कब पूरा होगा, क्योंकि समझते ये दुनिया है ही दुख की दुनिया, या तो सुख काग विष्ठा के समान है या सुख कहाँ से आएगा, इसलिए है ही दुख की दुनिया। तो कब शुरू हुआ कब अंत हुआ ये तो समझते ही नहीं, ये बुद्धि में चिंतन ही नहीं होगा। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे, हम ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय थे। क्यों बाबा कहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया सब ईश्वर के बच्चे हैं ना, तो ईश्वर के बच्चे माना ईश्वरीय संप्रदाय थे। हर एक उनको फादर कहकर बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। तो गाया भी जाता है उनकी गत मत न्यारी, गाते हैं ना, तुम्हारी गत मत तू ही जान। ईश्वर की गत मत इतनी न्यारी है कि वो वही जानता है और वही आकर मत देता है गति के लिए। भगवान की ऊंचे ते ऊंची मत है तो गाया भी जाता उनकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्री मत हमको क्या से क्या बनाती है, सोचो तो सही, क्या से क्या बनाती है भगवान की श्री मत हमें। स्वर्ग का मालिक, और जो भी मनुष्य मात्र है वो तो नरक का ही मालिक बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, न नरक में न स्वर्ग में, तुम संगम पर हो, ये तो निश्चय है ना कि हम संगम पर है। ऐसे तो नहीं समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, ये भी नहीं समझते कि हम तो नरक में हैं, हम संगम पर हैं। ये तो निश्चय है ना, निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते हैं, हम ही 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे, 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे। ये स्मृति आई है, 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं, जो धर्म बाद में आते हैं उनके जन्म भी थोड़े होते हैं, ये समझ की बात है। तुम बच्चों को अब ये निश्चय रखना है, फिर वही बात बाबा ने याद दिलाई, क्या निश्चय रखना है, हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो मनुष्य समझते हैं, अब मनुष्य क्या समझते हैं, हम तो कहते हमारा वही बाबा जिन्होंने कल्प पहले श्रीमत दी थी, अभी वही बाबा हमको फिर से रास्ता बता रहे हैं, तो फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। और मनुष्य क्या समझते हैं कि ये वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, ऐसे ही समझते ना, तभी तो कहते ब्रह्मा कुमारियां शास्त्र नहीं पढ़ती, ये नहीं पढ़ती। अब भगवान तो क्या कहते हैं कि वेदों शास्त्रों से मैं मिलता ही नहीं हूँ, मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ। तो मनुष्य समझते कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। कितना कॉन्ट्रास्ट, कहाँ वो क्या समझते हैं और भगवान क्या कहते हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है, मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानते। तो सिवाय तुम ब्राह्मणों के, बाबा कहते कोई भी नहीं जानता मैं कैसे आता हूँ, किसके तन में आता हूँ, कैसे श्रीमत देता हूँ, कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है, दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं, वो लोग ये नहीं समझते जो दुख देने वाले, बाबा कहते वो नहीं समझते क्या कि विकार में जाना दुख देना है, ये समझते थोड़ी है कि विकार में जाना दुख देना है, वो तो समझते तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल है। और यहाँ तक कई समझ लेते हैं कि अगर नहीं बनते विकारी तो हमारा ये हम जी नहीं सकते, ये जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी जरूरी है, ऐसे भी कई लोग समझते हैं। तो बाबा कहते हैं वो लोग ये नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है, अभी तुम जानते हो ये महान दुख है, विकार में जाना महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं, नरकवासी बनाते हैं, सोचो तो सही, नरकवासी बनने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं, शादी ब्याह में देखो क्या नहीं करते हैं, क्या कन्या को विकारी बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं नरकवासी बनने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं, यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं है, यहाँ साइलेंस से हम बाबा को याद करते हैं, ऐसे शादी मुरादी ये सब यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं, तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं, तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है, कितना तुम्हारा मान है, किस रूप में, शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे, बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है, तुम्हारा कितना मान है, जो तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का भी कुछ मान नहीं है। लक्ष्मी नारायण भी देवियों के आगे कुछ नहीं है, देवियों का इतना मान है। क्या कैसे सिद्ध होता है कि उनका इतना मान है, और सभी पूजा जो होती है, जो कुछ भी होता है, वो सब एक ही बार साल में, लेकिन देवियों की पूजा दो बार, तो बताओ तो किसका ज्यादा मान है, देवियों का। तो तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं, शिव शक्तियों का ही नाम बाला है। क्योंकि क्यों शिव शक्तियों का नाम इतना बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। भगवान ने सबको सुखी बनाया और हम उनके मददगार बनकर सबको सुखी बनाते हैं, इसलिए तुम्हारा भी उतना ही नाम है जितना भगवान का नाम है। इसलिए तुम शिव शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी है। लक्ष्मी नारायण वो स्वर्गवासी है, ये बड़ी बात है क्या? हाँ, स्वर्ग में रहते हैं तो स्वर्ग का सुख ले रहे हैं, क्या बड़ी बात है ये। जैसे वो स्वर्गवासी है, वैसे यहाँ के राजा रानी सब नर्गवासी है। वो स्वर्गवासी है, स्वर्ग में रहते राजा रानी, ये कलयुग में नर्कवासी है, नर्क के राजा रानी। ऐसे नर्कवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयां आदि है, हर बात में दुखी ही दुखी। सतयुग में हर हाल में, हर हालत में सुख ही सुख, हर हाल हालत में सुख ही सुख। सतयुग में अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, गाते भी हैं श्रीमत भगवानो वाच। श्रीमत मनुष्य वाच नहीं है, सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं है, यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो, बाबा के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियां, तो शिव के साथ शक्तियों का गायन है, साथ साथ गायन है। अभी फिर से वो पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को क्या करना है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ, हम ब्राह्मणों का धंधा ही है सबको सुख का रास्ता बताना। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं, तो धंधा नौकरी जो कुछ भी है वो दिन भर करो, पर शाम को तो बाबा की सेवा करो। तो कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए जो शाम के समय परिक्रमा पर निकलेंगे, परंतु इस समय जो शुद्ध, इस समय को शुद्ध कहते हैं, संध्या काल को शुद्ध कहते हैं, उसी समय आरती होती है, उसी समय भजन कीर्तन होते हैं, तो इस कहते हैं शाम के समय, हाँ, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है ना, फुर्सत मिलती है, काम धंधे से फारिग हुए और फुर्सत मिलती है तो पूजा पाठ करना है। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है, तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए, महाभारत में दिखाते हैं, द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते क्या मतलब है द्रौपदी के पांव दबाए। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है, बाबा के पास बूढ़िया आदि बहुत आती है, जानते हैं हाँ पांव दबाने की बात स्थूल में नहीं है, तो जानते हैं ये भक्ति करते करते थक गई है, आधा कल्प बहुत थके खाए है ना, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है, बहुत धक्के खाए अब पैर दबाते हैं थक गई होंगी टांगे, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है, अब श्री कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे, सोचने की बात है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पांव दबाए तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण कैसे पांव दबाएंगे, वो तो विश्व महाराज कुमार हैं, तो वो कैसे पांव दबाएंगे, शोभेगा भी नहीं, कहां विश्व महाराज कुमार और वो पांव बैठ के दबाए, ये शोभेगा, तुम श्री कृष्ण को पांव दबाने देंगी, मानो वो आए भी और कहे कि आपके पांव दबाता हूँ, तो तुम श्री कृष्ण को अपने पांव दबाने देंगी, माताएं देंगी हा? माताएं जो समझ हाँ आने दो पांव दबाई वाले, ऐसे है क्या, नहीं, तुम श्री कृष्ण को पांव दबाने देंगी, श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी, पांव क्या दबाने देंगी, आप उनको चटक पड़ेंगी, उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है ना, श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती नहीं है, वही सबसे तेजोमय है, अब इतना तेजोमय श्री कृष्ण आपके सामने आ जाए और आपके पांव दबाए तो कैसे दबाने देंगे क्या, तो कहेंगे बस हाँ सामने आपका साक्षात्कार करता रहूं देखता रहूं बस। दादियों को भी हम देखते थे ना कैसे वो संपूर्णता को प्राप्त किया, भले पूछना भी कुछ आते थे लेकिन दिल नहीं होती थी, थोड़ा दादी बोलती थी तो दिल होती थी सुने बस सुने, नहीं तो बस देखते रह गए देखते रहे। तो बाबा कहते हैं वही सबसे तेजोमय है, श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, अब ये भी बात जचती नहीं है, वो गांव का छोरा बन करके गांव में घूमता रहता था और मुरली बजाता था, बाबा कहते ये भी शोभता नहीं है, पांव दबाना भी शोभता नहीं है, और ऐसे भटक रहा वो गांव में और गाय चरा रहा है मुरली बजा रहा है, बाबा कहते ये भी शोभता नहीं है, बात ही नहीं जचती है, यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे, हाँ यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे, तुम बच्चों को बोलना पड़ता है शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। अब यहाँ बाबा के सामने आते थे बाबा से मिलते थे तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे, तो फिर उनको कहते थे शिव बाबा दिखाई तो देता नहीं है पर ब्रह्मा तन में है, तो टीचर्स उनको कहती थी जब बाबा के सामने आओ बाबा की गोद में आओ तो याद किसको करो, शिव बाबा को करो। वो बाबा भी कहते थे बच्चे किसकी गोद में आए हो, इनकी नहीं शिव बाबा की, तो शिव बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, टीचर्स बोलती थी बाबा स्टूडेंट्स को कि शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ, तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए, हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए, कितनी खुशी होनी चाहिए 21 जन्मों के लिए बाप शिव बाबा हमको सुखी बनाते हैं, ऐसे बाप के पिछाड़ी क्या हो जाना चाहिए, कुर्बान हो जाना चाहिए, कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, अभी सपूत नहीं है तो बाप क्या कुर्बान जाएगा, पर सपूत बच्चे पहले बाप पर कुर्बान जाते हैं फिर बाप उन पर कुर्बान जाते हैं, कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं, कैसे कुर्बान जाते हैं बच्चे, जो पिता कहे उसकी बाबा कहते हैं वो बच्चे मनोकामना पूरी करते हैं, कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं हाँ, कोई तो माँ बाप की मनोकामना हर पूरी करते हैं और कोई फिर ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं, बाप का खून भी करा देते हैं, अरे खुद ही कर लेते हैं औरों से क्या, खुद ही कर लेते हैं, पत्नी भी पति का खून कर देती, क्या क्या कलयुग में होता रहता है, जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है, हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी है, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। अब ये व्यसन मुक्ति अभियान जो चल रहा है उसमें तो गांव गांव में जाते हैं, और कैसे कहते भी, क्योंकि व्यसनों के तो बहुत वश है गांव में, इतना व्यसनों के वश है आज, जो ये समझते ही नहीं कि इनसे कितना कितनी बीमारियां आती है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी लेते हैं, और जब गांव में ये जाती है ना, वैन जाती है और उसमें कुंभकर्ण होता है, तो कुंभकर्ण को खड़ा कर वहां पर वो वैन खड़ी होती है, और कैसे धीरे धीरे कुंभकर्ण जागता है, तो वो बच्चे बहुत खुश होते हैं, अरे कुंभकर्ण जाग गया, तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती कुंभकर्ण को देखने के लिए। तो बाबा कहते हैं जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है, हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी है, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है, बरोबर उस समय बाप भी था, वो बाप भी था उस समय, सब जो अस्त्र शस्त्र यूज हुए वो सब उनके ही तो नाम है अभी जो हमारे अस्त्र शस्त्रों पर। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं पुरुषोत्तम, बन रहे हैं ना पुरुषोत्तम, तो कैसे बनते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, तुमसे कोई पूछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है तो क्या बोलो, मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर है, किसको कहो मनुष्य से देवता बनना, तो देवताएं तो मशहूर है। तो बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ, एक तो शिव के भक्तों को समझाओ, दूसरा देवताओं के भक्तों को समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की, तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो अब शिव बाबा के भक्तों को क्या बोलो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा तो करते हो परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है, हाँ बोलो शिव की पूजा तो करते हैं पर ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है, हाँ जिसकी हम पूजा करें ये पतित पावन है। बाबा कहते उस रूप से तो नहीं समझते हैं, तो जिनकी हम पूजा करते हैं वो पतित पावन है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं, शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं शिवलिंग की घर में भी रख करके, फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है, कितना जाते हैं चार धाम की यात्रा करने के लिए। तो बाबा कहते हैं फिर इतना धक्के खाने की क्या जरूरत है, तुमको इनसे छुड़ाते हैं बाबा, धक्के खाने से छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो, शिव के बच्चे शिव से शक्ति लेते हो, वो भी मिलेगी याद से। कैसे मिलेगी शक्ति, शक्ति दो ऐसे तो नहीं मिलेगी ना, भक्ति मार्ग जैसे गाते इतनी शक्ति तू देना दाता, हम तो खाली मांगते ही रहते। बाबा कहते शक्ति दो कहने से नहीं मिलती है, उनको याद करो और उनसे वो सकाश लो, वो शक्ति लो। तो बाप से शक्ति लेते हो तो वो तो मिलेगी याद से, विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विक्रमा जीत पावन बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है, तुम अभी राम के बने हो, राम के बने हो, पहले किसके थे, रावण के थे, तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं, रावण का भी चित्र है, राम का भी चित्र है, सब भारत में है। जिनकी इतनी पूजा होती है, हाँ वो भी तो भारत में ही है ना, शिव बाबा भी भारत में, अभी राम मंदिर में कितनी श्री राम की पूजा होती है, सब भारत में। ढेर के ढेर मंदिर है, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका, इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। हाँ बाबा कहते ना, विश्वास, श्रद्धा, भावना, ये सब बहुत सुंदर चीजें, लेकिन जब वो अंध जुड़ जाता है ना, तो फिर ये गलत हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, हम भी अंधे ही थे, इनको भी मालूम नहीं था। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को भी ये मालूम नहीं था, पहले दादा लेखराज को, इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, मैं ही ब्रह्मा बनूंगा ये तो कभी सोचा भी नहीं होगा दादा लेखराज ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है, जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सत्युग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम जानते हो पूज्य होते ही है कहाँ, सत्युग में, यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते, सब पुजारी है तो पूजा ही करते। तुम हो शिव शक्तियां, अभी तुम क्या हो, दुनिया में तो पुजारी ऐसा है पूजा ही करते हैं, तुम क्या करते हो, अभी तुम न पुजारी हो न पूज्य हो। हम पुजारी भी नहीं है, हम पूज्य भी नहीं है, न पुजारी हो न पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ, पूज्य बाबा बना रहे हैं तो जो पूज्य बना रहा है उनको भूल मत जाओ। ये साधारण तन है ना, ब्रह्मा बाबा को देख करके वहां साधारण समझते थे, पर कौन बोल रहा है इनके द्वारा, वो तो जिनको ज्ञान था वही समझते थे। ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंच से ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं, पुरानी पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। पुकारा भक्ति मार्ग में, तो भगवान अगर आएंगे और बच्चों से मिलेंगे तो जरूर कोई शरीर का आधार लेंगे। तो पतित शरीर पतित दुनिया पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं, अब यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं, कितना निमंत्रण दिया भगवान को, भगवान आओ आओ। हाँ बाबा कहते यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं, जो पावन शरीर मिले भगवान को और उनके तन में आए। जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन का काम क्या है, जरूर सबको पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना, ऐसे तो नहीं ले जाएंगे शरीरों के साथ, तो शरीरों को छोड़ना पड़े। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाई दोष मचाते हैं, कितना रोते हैं लोग। तुम खुशी से जाते हो, सब खुशी से जाते हैं ना, अभी अभी अचानक अंत आ जाए, खुशी से जाएंगे या रोकर जाएंगे, सब खुशी से जाएंगे। तुम खुशी से जाते हो, अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है, देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। बाबा कहते थे जाओ पैदल और शांति में जाओ, बाबा की याद में जाओ और देखो कौन जास्ती याद करता है। शिव बाबा को जास्ती कौन याद करते हैं, शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य। याद में रहते रहते शरीर छूट जाए अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं, ऐसे पुरुषार्थ करो। है कई मिसाल ऐसे, या योग में बैठी बैठी बैठे आत्मा उड़ गई। बेड़ा है, सभी को बाप कहते हैं, ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन, अभी नेक्स्ट पॉइंट, सुख के दिन फिर आएंगे। बच्चों को बाबा आथत देते हैं, सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो कि बाबा हम आपके पास चले। इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो, बाबा हम आपके पास चले। आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ में ले जाएंगे। ऐसे कहते हैं सब बाबा को। क्या कहना है बाबा को? कि आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे। सचमुच काशी में जो मंदिर है, जो वहां काशी का जो मंदिर है उसके पीछे काशी करवट है, कुआं है, तो वो पहले तो सब कितने काशी करवट खाते थे। वहां तलवार रहती थी, ऐसे अपना सिर काटते थे और सिर जा करके वो शिव पर पड़ता था, या कूद पड़ते थे तो कैसे वो तलवार काट लेती थी, तो बहुत खुशी से करते थे। काशी करवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते करते चले जाते हो शांतिराम। कौन सा? काशी करवट खाते हैं, बाबा की याद। तो याद करते करते चले जाते हो शांतिधाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं, और वो समझते हैं भक्ति मार्ग में हमारे, वो समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं, वही कोई, वह कोई योग बल नहीं है। गंगा स्नान करना ये कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, नहीं सिर्फ फिर पापों का खाता शुरू होता है। काशी करवट जब खाते हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहां कोई विकार आदि होता नहीं, मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं। सब बाबा कॉन्ट्रास्ट बताकर फिर कहते हैं, मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियां सब राज समझाते हैं। तो मुख्य बात ये है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है, कितना नम्र है। पतित पावन ऊंचे थे, ऊंचा पर कितना निर्माण है, कितना नम्र। कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट है। तो तुम्हारे दो सर्वेंट है, कौन दो सर्वेंट है? ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों हमारे सर्वेंट। देखो बाबा कितना नम्र होकर ये कहते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़ी कुछ समझते हैं। त्रिमूर्ति चार मुख दिखा दिए हैं ब्रह्मा के, और सामने तो तीन ही दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं अर्थ थोड़ी समझते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला सदा ये निश्चय रहे। इस निश्चय में कभी डावाडोल न हो क्या, सदा ये निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। बाप ने तो बच्चों बच्चे की हर कामना पूरी करता है, पर जब बुढ़ापा आता है बाप का, तो बच्चे का भी फर्ज है ना कि बाप की हर कामना पूरी करे। तो सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है और बाप की हर कामना पूरी करनी है। या तो बाबा शिव बाबा बूढ़ा तो होता नहीं, पर शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना माना बाप की कामना पूरी करना। जैसे बाप दादा निर्माण और निरअहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। वरदान, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। केवल सेवा नहीं, पहले स्व उन्नति, तभी बाबा कहते हैं सेवा में भी उन्नति होगी। तो सच्चे सेवाधारी भव, स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। अगर स्व की उन्नति नहीं है, ऐसे ही सेवा कर रहे हैं, तो सेवा भी में भी सफलता नहीं मिलती है। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, ये भी सेवा है। हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना ये भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म, स्व उन्नति भी अपनी करते रहते और उससे फिर सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। स्लोगन, समीप आने के लिए क्या करना होगा? बाबा के समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। जो मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, ये बाप समान है? अगर नहीं है तो नहीं करना है। समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। उसके अंतर्गत एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। कैसे आएगी एकाग्रता? अंतर्मुखता से एकाग्रता आएगी। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रू रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। आत्मिक स्थिति, आज 10 तारीख है, मम्मा की विशेषताएं सुनते हैं। दातापन के गुण से दिव्यता की शक्ति से संपन्न थी मम्मा। मम्मा सदा मास्टर दाता बनकर रही, सदा देने की भावना। मम्मा को, मम्मा की मुख्य धारणा थी कि लेना एक से है और देना सबको है। इसी गुण से वे दिव्यता की शक्ति से संपन्न बनती गई। उनकी अगर कोई महिमा करता तो मम्मा आपने बहुत अच्छी मुरली चलाई, अगर ऐसे भी मम्मा को कोई कहता कि मम्मा आपने तो आज बहुत अच्छी मुरली चलाई, आपने हमें समय पर बहुत सहयोग दिया, हाँ मम्मा को कहते थे, तो मम्मा कभी भी उस महिमा को स्वीकार नहीं करती थी। सदा कहती ये प्रभु प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है, ये बाबा का दिया हुआ है, बाबा ने दिया है, मैं तो उनका प्रसाद बांट रही हूँ, मैं नहीं बांट रही हूँ, मैं नहीं दे रही हूँ, ये प्रभु प्रसाद जो बाबा ने दिया वो बांट रही हूँ। इससे उनकी वाणी में दिव्यता झलकती थी, वो मैं और मेरेपन के भान से दूर रही। बहुत बड़ी विशेषता थी मम्मा की, मैं और मेरेपन के भान से दूर रही। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज तो भट्टी का शुभारंभ है, पानीपत के भाई बहने आए, कोई आए पानीपत वाले आए अभी तक? थोड़े आए, थोड़े हाथ उठाओ पानीपत वाले। अच्छा, बाकी सब नीचे है, वो आज आ जाएंगे, भाई भी है। तो पानीपत वालों की भट्टी आज शुरू हो रही है। सरला दीदी भी आई है, सरला बहन पानीपत की आई है, सरला दीदी, हाँ भाई आ गई सरला दीदी, पानीपत की इंचार्ज। तो बहुत अच्छा, आज से शाम को 5 बजे से आपकी भट्टी शुरू होगी, 5 बजे सभी मेडिटेशन हॉल में आएंगे और आपका नाश्ता, दिन का भोजन, रात का भोजन सब बड़े डाइनिंग हॉल में है। तो बड़े डाइनिंग हॉल में ऊपर ही जाएंगे नाश्ता, दिन का भोजन, रात का भोजन लेने, और चाय सुबह और शाम की नीचे होती है। चलो बाबा को याद करेंगे।